98 से 101 तक एक ही टॉपिक है, इसलिए हम हल्का सा खुलासा करके फिर इंशाल्लाह इन आयात को देखेंगे। कुल या अहलल किताब लिमा तकफुरून बि आयातिल्लाही, कह दीजिए कि अहले किताब तुम क्यों कुफर करते हो अल्लाह के कलाम का, जबकि वल्लाहु शहीदुन अला मा तामलून, और अल्लाह ताला गवाह है उस पे जो तुम अमल करते हो। दूसरी बात, कुल या अहलल किताब लिमा तसुद्दून अन सबीलिल्लाही मन आमना, तो कह दीजिए कि अहले किताब तुम क्यों रोकते हो अल्लाह की राह से ईमान लाने वालों को। इसकी वजह क्या है? तबगूनहा इवजम व अंतुम शुहदा, कि तुम ढूंढते हो इसमें ऐब और जबकि तुम खुद गवाह हो। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह ताला बेखबर नहीं तुम्हारे काम से। यहाँ तक अहले किताब को ख़िताब करने के बाद अब ईमान वालों को उनकी साजिशों से आगाह किया जा रहा है। आयत नंबर 100, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउ फ़रीक़न मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब यरुद्दूकुम बादा ईमानिकुम काफिरीन, ए ईमान वालों, अगर तुम कहना मानोगे बाज़ अहले किताब का तो वो फेर देंगे तुमको तुम्हारे ईमान लाने के बाद काफिर बनाकर। वकैफ तकफुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाही, और तुम किस तरह काफिर हो सकते हो जबकि पढ़ी जाती हैं तुम पर अल्लाह की आयतें। वफ़ीकुम रसूलुहु, और तुम में इसका रसूल है। तो कंक्लूजन क्या है इस पूरे टॉपिक पे, इस पूरी बात का कंक्लूजन क्या है? वमई या तसिम बिल्लाही फ़कद खुदी इला सिरातिम मुस्तकीम, और जो कोई मजबूत थाम ले अल्लाह को तो इसको रहनुमाई मिल गई सीधे रास्ते की। ये चार आयात है, पीछे से बात चल रही थी अहले किताब के बातिल अकायद की, इस्लाम के बारे में जो शुभात थे, कभी कहते कि ऊँट का गोश्त क्यों हराम है, कभी कहते कि बैतुल्ला पहला घर है, इस तरह के शोशे थे। बीच में थोड़ी सी बात आ गई हज की, क्योंकि जहाँ भी हज़रत इब्राहिम का तस्कर आता है तो अमूमन उसके बाद हज की बात ज़रूर आती है। अब यहाँ से एक ख़ास वाक्य को बेस बनाकर यहूद के दिलों में मुसलमानों के लिए जो ग्रज, जो जेलसी और जो जलन है उसका तस्करा है। थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड आपके सामने रखूंगी। जब मुसलमान मदीना में आए तो ज्यूस वहाँ पहले से मौजूद थे। जब मुसलमानों को उन्होंने वहाँ फलते फूलते देखा तो दिल में हसद आ गया। ज्यूस ने मदीना के लोगों को लड़ाने को अपनी मईशत यानी अपनी इकोनॉमी का ज़रिया बना रखा था। हम ये चीज़ शायद जानते हैं कि नहीं, लेकिन ज्यूस शुरू से ही वेपन्स बनाने का काम करते थे। जो मदीना के ज्यूस थे इनमें बहुत सारे गोल्ड स्मिथ थे, सुनार थे, यानी धातों को ढालना इनको आता था। इन्होंने अपने इस ऑक्यूपेशन को बढ़ाने के लिए पहले वेपन्स बनाए। जब वेपन्स बन जाते तो अब ज़ाहिर है कि ये कोई खाना थोड़ी है जो खुशी खुशी खाएगा, तो वेपन्स बेचने कहाँ हैं हथियार। लिहाजा उसके लिए इनकी स्ट्रेटेजी क्या थी कि जो मदीना के लोग हैं जैसे औस और खजरज, ये दो डिफरेंट ग्रुप्स थे बहुत फेमस, इन दोनों को आपस में लड़ाते थे। पहले ये कुछ ऐसी कोशिशें करते, ऐसी साजिशें करते कि ये दोनों लड़ते। जब औस के लोग खजरज से लड़ते तो ज्यूस फिर सेकंड काम क्या करते कि औस के पास जाते, तसल्ली देते, फिक्र नहीं करो, हमें पता है कि तुम सच्चे हो, ये ऐसे ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। कहते हाँ बस क्या करें, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं। ये कहते कोई बात नहीं, गो हेड लड़ो, हम तुम्हें फ्री असलहा देंगे, बस हमें किस्तों में पैसे देते रहना, इंस्टॉलमेंट्स कर लेंगे। इनको बेच के आ जाते, फिर उठते तो खजरज के पास चले जाते। खजरज जो थे वो कंपेरेटिवली ज़्यादा अमीर कबीला था, उनसे जाके उनकी मेंटेलिटी पे बात करते, देखो तुम तो इतने बड़े इनफिशियल और ये छोटे लोग तुम्हारे बराबर आ रहे हैं, दिस एंड दैट, तुम ऐसा करो कि उठो ज़रा इन पे चढ़ाई करो, हम तुम्हें हथियार देंगे और बस पैसे तुम हमें थोड़े करके देते रहना। दोस्त बन के दोनों के सामने आते लेकिन अंदर से अपने कारोबार बना रहे थे। अब हुआ क्या कि वो दोनों लड़ते, औस और खसरत दो भाई थे। हिस्ट्री को अगर आप मदीना की देखें तो दो बड़े सरदार थे, एक का नाम औस था एक का खसरत था। लेकिन इन ज्यूज की इन कोशिशों से ये दोनों आपस में लड़े। जब नबी सल्लम मदीना में आए तो उससे पहले एक जंग थी, जंगे बुआस, बा आइन अलिफ सा। तकरीबन कहते हैं कि 200 साल तक ये जंग लड़ते रहे ये लोग। हथियार लेते उनसे, मरते मारते, थोड़ी देर अमन होता, फिर नए हथियार बनते, फिर जंग शुरू होती। यानी इनकी शुरू से यही स्ट्रेटेजी रही कि ये उस हर दौर के मुसलमानों को आपस में लड़ाते और अपने हथियार बेचते। अब हुआ क्या कि अल्लाह के नबी सल्लम मदीना में आ गए, तला बद्रु अलैना। और पीछे हमने पढ़ लिया कि जो ईमान वाला होता है वो अमन वाला हो जाता है। हाँ, इसके अंदर आने वाले को बहुत ही अमन मिलता है। वो औसर खजरा जो कई सालों से लड़ रहे थे ना, वो आपस में भाई भाई बन गए। अल्लाह के नबी ने मक्का से आने वालों और मदीना वालों को भाई बना दिया, एक महाजर एक अंसारी बना। अब जू ही ये अमन कायम हुआ तो क्या नतीजा निकला होगा इसका? ज्यूज की इकोनॉमी डाउन हो गई, उनके हथियार पड़े हुए, बेचे कौन, खरीदे कौन। ये थी वो बहुत बड़ी रीज़न जिसकी वजह से ज्यूस मुसलमान नहीं होते थे, इस्लाम को आने नहीं देते थे, कि इस्लाम इज़ द रिलीजन ऑफ पीस, अमन का मज़हब है। इस्लाम आम हो गया, अमन चला जाएगा। कल भी यही, आज भी यही बात है। सारी दुनिया की कुफर वाली ताकतों को ये अच्छी तरह पता है, अगर दुनिया में ग्लोब पे सारे ही मुल्क सब्ज रंग के हो गए तो हमारे प्लान्स फ्लॉप हो जाएंगे। लिहाजा मौका बेमौका वो मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगंडे करते रहे, जो हम पीछे से पढ़ते ही आ रहे हैं। ऐसा ही एक मौका हुआ, एक शख्स था, बड़ी उम्र का था, मुख्तलिफ नाम आते हैं। एक जगह आता है कि शमास बिन कैस उसका नाम था, ओल्ड था, जियो था। बास जगह उसका नाम कुछ थोड़ा सा इसके प्रोनाउंसिएशन से फ़र्क है, शासन बिन कैस था। बहरहाल एक जियो था, बहुत ज़्यादा तासुब रखता था मुसलमानों से। एक जगह किसी पार्टी के पास से गुजरा, यानी एक पार्टी थी, ग्रो एक मुसलमान जो थे वो आपस में बैठे हंस बोल रहे थे, कोई दावत चल रही थी। इसने जब देखा कि औस और खजरज के लोग तो आज बड़े भाई भी बन गए, कल तक तो ये दीन के नाम पे भी लड़ते थे, दुनिया के भी लड़ते थे, आज सारे एक जगह हो गए। कहते हैं कि इसके दिल में इतना हसद उठा कि वहाँ से बाहर निकल कर एक जवान शख्स को कुछ पैसे दिए, कहने लगा जाओ उस पार्टी में, बस बातों ही बातों में जंगे बुआस का किस्सा शुरू कर दो, यानी कोई पुरानी जंग का किस्सा शुरू कर दो, ऐसे जैसे कोई पाकिस्तान इंडिया की जंग का किस्सा शुरू करके मुस्लिम्स को इंडियन से लड़ाए। उसने कहा ठीक है, वही हुआ। मुसलमान इतनी मोहब्बत से खा पी रहे थे, हंस बोल रहे थे, एक शख्स आया, उसने आके शेर पढ़े जिसमें जंगे बुआस का किस्सा था। बस वो जंग की बात शुरू हुई तो इनके अंदर फिर वही कुफर और गैरत आ गई। थोड़ी देर पहले जो पार्टी इतनी अच्छी चल रही थी वो मैदान जंग बन गया, लड़ाई लड़ाई, हत्ता कि उन्होंने कहा लो तुम कहते हो हम हार गए, ये जीत गए, हम दोबारा वो जंग करके दिखाते हैं। हर्रा नाम का एक मैदान भी उन्होंने नॉमिनेट कर लिया कि चलो वहाँ जाते हैं, दोबारा लड़ के दिखाते हैं। अब सोचिए कि मुसलमान लड़े, इतनी बड़ी एक साजिश हुई और मुसलमानों को पता ना चला। किसी ने जाके फौरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि वहाँ तो ये लड़ाई होने लगी है। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आपने बहुत दिलसोज बातें की। आपने कहा लोगों, अल्लाह ने तुम्हें इतनी इज़्ज़त दी, तुम्हें अल्लाह ताला ने इतना अमन दिया, इतना सुकून दिया, अल्लाह का नबी तुम्हारे पास भेजा, तुम्हें अल्लाह की आयतें मिली, तुम फिर जाहिल हो गए? कहते हैं बस अल्लाह के नबी की बात सुननी थी तो सहाबा को पता चला कि हमें क्या हो गया था, ये तो एक शैतानी साजिश थी जिसमें हम आ गए। फिर सब गले लगे और रोए धोए, उस पर यह आयात नाज़िल हुई। अब आइए ज़रा इन आयात को साथ लेके चलते हैं। कुल या अहलल किताबी, अल्लाह के नबी से कहा इनको बताओ ए अहले किताब, यहाँ देखिए कि स्टाइल कितना प्यारा है, ओ अहले किताब, कोई बुरा टाइटल नहीं दिया इनको, ओ पीपल ऑफ बुक। कुछ और भी तो कहा जा सकता था ना, ओ लड़ाने वालों, ओ हसद करने वालों, लेकिन इस्लाम का ये मिजाज नहीं है। आप अगर किसी को अल्लाह का पैगाम देना चाहते हैं ना तो आपको उसको बहुत ऑनरली खिताब करना पड़ेगा, उससे इज्जत दें लोगों को, इंशाल्लाह वो आपकी बात सुनेंगे। क्या है, लिमा तक फुरून अभी आयतिल्ला, क्यों भाई तुम अल्लाह के कलाम से मन करो। या फिर एक खूबसूरत अंदाज देखिए कि आयतिल्लाह कहा, क्योंकि अल्लाह का तो वो भी मानते थे ना, ये कहने के बजाय लिमा तक फुरून बिल कुरआन या लिमा तक फ़रोना नबी सल्लम के नाते से कोई बात होती, यानी कॉमन ग्राउंड पे बात की कि देखो तुम भी अल्लाह को मानते हो ना, तो ये कुरान भी तो अल्लाह की आयतें हैं, तुम क्यों इसके मुनकर हो गए हो, ये दीन ही का तो काम है, तुम इसको क्या समझ रहे हो कि ये कोई दीन के ख़िलाफ़ काम हो रहा है। तुम क्यों इसका राज इनकार कर रहे हो? तुम्हें क्यों समझ नहीं आती? तुम्हें सब कुछ पता है। वल्लाहु शहीदुम अलामा तामलून, देखो अल्लाह को सब पता है जो तुम कर रहे हो। ये वो सोच होती है जो बंदे को गुनाहों से रोकती है। क्या आप उसके शऊर को बेदार कर दें? कोई दीनदार किसी दूसरे दीनदार के खिलाफ बात करे, आप उसको ये एहसास दिला दें अल्लाह ने आपकी बात लिख ली। बस आप देखिए, मिसाल है ना, आप कोई काम करते हैं, कोई पढ़ते हैं, कोई बात करते हैं, आपकी ये क्लास ही है। कल कोई बाहर आपसे बात करता है कि आपको पता है वो तो आपको गुमराह कर रहे हैं, कुरान पढ़ा रहे हैं। भला औरतों का भी कोई काम है कुरान पढ़ना पढ़ाना? तो आप आगे से रोएं धोएं सफाइयाँ पेश करें? नहीं, आप एक जुमला बड़े प्यार से बोल दें कि वल्लाहु शहीदुन अलामत, आपने जो बात कही है ना आंटी, अल्लाह ने सुन ली है, अब अल्लाह जाने और आप जाने। आप देखेंगे उनका रंग बदल जाएगा। लोग इतनी केयरलेसली दीनदारों के बारे में बातें करते हैं, दीन का काम कहीं हो जाए उस पर कोई गम नहीं किसी को। किसी ने एक्सपीरियंस आप ही लोगों में से सुनाया, अगर वो होती इधर तो वो खुद ही आपको सुना देती कि किस तरीके से वो एक जगह से गुजरी और उनको नहीं पता कि वो इसी स्कूल की स्टूडेंट है, और करीब दीनदार हजरात मस्जिद से नमाज़ पढ़ के आने वाले ग्रोसरी स्टोर पर खड़े हमारे स्कूल के बारे में गिप्तें कर रहे हैं कि आपको पता है कि आप यहाँ वो आई हैं और औरतों को गुमराह कर रही हैं, और उनको कह रहे हैं कि आपके तो घर वाले इधर जा रहे हैं। ये कहती मैंने सुन लिया, और जो दुकानदार थे उनको पता था कि मैं इसी स्कूल से आई हूँ, तो वो परेशान हो गए उनकी बातें सुन के, लेकिन जो बातें कर रहे थे उनको तो नहीं पता। तो कहने लगी कि मेरा दिल चाहा कि मैं उनको खड़े होकर कहूँ क्या मैं आपको गुमराह दिखती हूँ, और अल्लाह का शुक्र उससे कुछ दिन पहले ही उन्होंने हिजाब निकाब भी किया। तो कहने लगी कि एक साल पहले जब मैं नंगी तकरीबन अपने ख़राब खुलियों से फिरती थी तो तुम्हें उस वक़्त मैं गुमराह नहीं लगती थी, बताओ तुम्हें मैं गुमराह लगती हूँ? तुम लोग यहाँ खड़े होकर गिबतें कर रहे हो हमारी, ये कौन सा दीन है? यानी जब दीन के नाम पर लोग दूसरे दीनदारों की ऐसी बातें करें, वल्लाहु शहीदुन अला मा तअमलून, अल्लाह को खूब पता है आपने क्या किया। कुल या अहलल किताब लिमा तसुद्दून अन सबीलिल्लाह, ए अहले किताब तुम क्यों रोकते हो लोगों को अल्लाह के रास्ते से? आज के अहले किताब को भी बंदा पूछता है कि तुम लोगों को अल्लाह के रास्ते से क्यों रोकते हो? मन आमन, जो ईमान ला रहे हैं, जिसको अल्लाह से पहचान हो रही है, जिसकी अल्लाह से दोस्ती हो रही है, तुम उन लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हो? तब वो नहा इवज, इसलिए कि इवज ढूंढते हो, तुम्हारे फवायद अब कम हो रहे हैं, या तुम्हारी लगता है कि जो बातें हैं वो लोगों के ऊपर खुल रही हैं। यदि अहले किताब ने ये कहानियाँ खोली हुई थी, हम तुम्हें बख्शवा देंगे, हमारे बुज़ुर्ग तुम्हें बचवा देंगे, ये होगा, आप तुम लोगों को अल्लाह के दीन से रोक रहे हो। वन तुम शुहदा, तुम खुद गवाह हो, जो तुम कर रहे हो तुम्हें खुद पता है। इससे क्या पता चलता है कि उनको पता था कि नबी सल्लम सच्चे हैं, ये दीन सच है, लेकिन अपनी कुछ इनसिक्योरिटीज़ की के खौफ से अल्लाह के नबी की बात चलने नहीं देते थे। तो कहा तुम्हें खूब अच्छी तरह पता है। अब बताइए आयत कौन नाजिल कर रहा है? अल्लाह ताला कर रहे हैं ना, जो सबको जानते हैं। तो कहा वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, अल्लाह खूब जानता है जो तुम अमल कर रहे हो, उसको वो गाफिल नहीं है। यानी फिर तुम जानो, तुम्हारा रब जाने। बिल्कुल प्रवोक करने वाला स्टाइल है कि तुम इन चीज़ों को अपने ऊपर ना लो। और आप देखिए, पहले अहले किताब को कहा, अब मोमिनों को कहा, ईमान वालों को। यही आज के दौर में उम्मत मुस्लिमा को भी मैसेज है। दुश्मन तो रहेंगे, साजिशें तो होती रहेंगी, इस्लाम के ख़िलाफ़ लोग बातें करते रहेंगे, अब क्या करो? एजिटेशन करो, बैनर्स पकड़ के रोड्स पे निकलो, मुर्दाबाद के नारे लगाओ, नो बिग क्रॉस, बल्कि होश करो, अपने दीन को ठीक करो। या युहल्लसीना मनु, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, इन तुतीउ फरीकम मिनल्लज़ीन ऊतुल किताब, आप इसको हाईलाइट कर लें, ऐ मुसलमानों अगर तुम अहले किताब के एक गिरोह की बातें मानोगे, इताअत करोगे, उनके फुटस्टेप पे चल पड़ोगे, जो वो खाते हैं तुम खाओगे, जो वो करते हैं तुम करोगे, उनके लाइफस्टाइल को तुम अपनाओगे, उनके तौर तरीकों को तुम फिर मान लोगे, होगा क्या? तुम अपडेटेड रहोगे, अप टू डेट बनोगे, कामयाब हो जाओगे, सक्सेसफुल होगे? नहीं। तुम आंखें बंद करके इनके तौर तरीकों पे अगर चलोगे, यरुद्दुकुम बादा ईमानिकुम काफिरीन, ये तुमको तुम्हारे ईमान से हटाकर काफिर बना देंगे। कुरान की आयत है ना, तर्जमा आपके सामने लिखा है, लफ्ज़ ये आपने पढ़ लिया, ये किसी उस्ताद की बात नहीं, ये अल्लाह के नबी की भी बात नहीं, ये इस ज़मीन व आसमान को बनाने वाले रब की बात है, जो बर्फ़ भेजता है, जो फूल लाता है, जो पत्ते गिराता है, वो रब कह रहा है कि अगर तुम अहले किताब के ऐसे गिरो, देखिए हर अहले किताब नहीं, मत आप सोचें कि सारे अहले किताब बुरे होते हैं, मिन सम ऑफ, जैसे मुसलमानों के थोड़े से बिगड़े हुए लोग सारे मुसलमानों को बदनाम करते हैं ना, इसी तरह अहले किताब के कुछ बिगड़े हुए और इनके बिगड़े हुए लोग मजहबी तबका था। आम लोग आपको जो सड़कों पे जाते हुए स्कूलों में कॉलेजों में ऑफिसेज में दिखते हैं, दे आर वेरी नाइस। उनको खुद बेचारों को अपना भी दीन नहीं पता, जैसे हमें अपना नहीं पता था, इसलिए उनको छोड़े। चंद लोग पीछे से एक सोच आती है तो वो सबको बहका देती है कि अगर तुम इनकी बात मानोगे ये तो तुम्हारा ईमान ले जाएंगे। इनको पता है तुम्हारी सबसे कीमती चीज़ तुम्हारा ईमान है। याद रखें, शुरू से बात हो रही है सबक के शुरू से, सबसे कीमती चीज़ मुसलमान के पास उसका ईमान होता है। ये बाकी चीज़ें तो बिल्कुल रद्दी की टुकड़ियां लगती हैं अगर सच्चा ईमान होता है। कहा बस ये तुम्हारे ईमान के ही दुश्मन है। आज उन्होंने मुसलमानों से ईमान ही तो छीना। आप देख लें, जब मुसलमान से ईमान छीनता है ना तो वो कुफार की सारी चीज़ें लेने को तैयार, उनका स्टाइल, उनकी ज़िंदगी, उनके तौर तरीके। वो जहन्नुम में गिरेंगे ये भी गिरने को तैयार, वो एक जूता पहन के चलेंगे ये चलने को तैयार, वो अपनी पैंटें फाड़ के चल पहनेंगे ये भी पहनने को तैयार, वो एक बाजू उतार देंगे ये उतारने को तैयार, वो आधे जिस्म खोल देंगे तैयार। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम अपने पहले लोगों के कदम ब कदम चलोगे, जैसे के यानी खो एक जानवर होता है कि अगर वो खो के बिल में घुसेंगे ना, इट्स वेरी स्ट्रेंज थिंग कि जानवर का जैसे चूहे के बिल में कोई घुस जाए, तो कहा अगर वो उसमें घुसेंगे ना तो मुसलमानों तुम भी उनके पीछे घुसोगे। तो कहा अल्लाह के नबी आपका इशारा अहले किताब यानी ज्यूज़ और क्रिश्चियन की तरफ है, तो आपने कहा और नहीं तो क्या। बल्कि एक रिवायत में तो इतने सख्त लफ्ज़ हैं कि अगर वो अपनी माँ से जिना करेंगे तो तुम भी करोगे। ये कौन कह रहा है जो रहमतुल आलमीन है? आपको उम्मत मुस्लिमा के मसाइल समझ आ रहे हैं इस पारे के साथ से? आज चैलेंज ये नहीं है कि हमारे पास मीडिया नहीं, आज चैलेंज ये नहीं कि साइंस नहीं है, आज हमारे पास रिसोर्सेज नहीं, सब कुछ है माशाल्लाह। सबसे ज़्यादा अमीर मुल्क मुसलमानों के, अमीर शख्स मुसलमानों का, तेल हमारे पास, गैस हमारे पास, सरहेज ज़मीनें हमारे पास, लेकिन मुसलमानों का ब्रेन ले लिया इन्होंने। अगली आयतों में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगला सबक कोई छुट्टी ना करे कल, इतना अहम सबक है कल का कि आप इतना बिग इशू समझ जाएंगे इंशाल्लाह ताला कि मुसलमानों के पास सब कुछ हो के भी वो मुफलिस और कलाश क्यों है। क्योंकि मिन बाद ईमानिकुम काफिरीन, ईमान के बाद कुफर पे ले जाएंगे। और साथ ही फिर मुसलमानों को नेमतों का एहसास दिलाया जा रहा है कि तुम ना शुक्र क्यों बनते हो, व कैफ तकफुरून, हाउ इज़ इट पॉसिबल, कैसे तुम कुफर पे आ सकते हो, तुम्हें अब कुफर के तरीके कैसे अच्छे लग सकते हैं। व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह, अब तो तुम पर अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं, अब तो तुम अल्लाह की किताब खोल के बीच में बैठे हुए हो। दिन रात वही का सिलसिला आता था, नबी सल्लम पे आयतें आ रही थी, जिब्राइल आ रहे थे, वफ़ीकुम रसूलहू, और तुम्हारे पास तो अल्लाह का पैगंबर है, अल्लाह का पैगाम तुम्हें देने वाला है, फिर बहक जाओगे। चलो नहीं थी बात, नहीं रिसोर्सेज थे, नहीं कोई बताने वाला था, नहीं कोई पूछने वाला था, और बात थी, लेकिन अब तो अल्लाह ने सारी सहूलतें दे दी। अब अगर ऐसे प्रोपेगंडों से, ऐसे कल्चर की जद से खुद और अपने बच्चियों और बच्चों को बचाना चाहते हो, अपने मर्दों की आंखों को पाक करना चाहते हो, तो वह मैया तसिम बिल्ला, अल्लाह को मजबूती से पकड़ लो। ऐसे लग रहा है कि अल्लाह ताला मौजूद है और उसको पकड़ लो। अल्लाह को मजबूत पकड़ना कैसे? बस आयत नंबर 102 पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी कि वा तसिमु बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को थामो, और अल्लाह की रस्सी ये कुरान है, इसको थामोगे फ़कद हुदी इला सिरात मुस्तकीम, तो वो सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई कर दिया गया। कि फितने दुश्मन जितना मर्ज़ी बड़ा हो जाए, जितना मर्ज़ी स्ट्रांग हो जाए, मुसलमान जब अल्लाह से और अल्लाह की किताब से जुड़ेंगे इंशाल्लाह दुश्मन कुछ नहीं करेगा। अब देखिए, एक शख्स से सारी दुनिया डरती है, क्या वजह? उसके पास क्या है? ईमान है। हर दौर में आप देखिए एक पर्सनैलिटी कुफर ने प्रोमिनेंट कर दी, उसको ही सारे दुनिया के फितनों और टेरर्स का सबब बनाते हैं। क्या चीज़ है उसके पास? मिलियनेरियन है, कोठियां, बंगले, गाड़ियां नहीं, ईमान होता है। चाहे वो पर्सन है कोई कि नहीं, चाहे वो इनका अपना तखय्युल है, वो अपना सपोजिशन है, हर दौर में इन्होंने अल्लाह से डरने वालों को अपने रास्ते का थ्रेट समझा। जैसे पत्थर आते हैं ना रास्ते में, तो उनको पत्थरों को हटाओ ताकि रास्ता मिले। ईमान वाले लोग कुफर को अपने रास्ते के पत्थर दिखते हैं, इसलिए उनको हटाना, उनको दुनिया से गिराना, इधर करना, वो सारी मुश्किलात का हल बताते हैं। तो बहरहाल हमारे लिए यहाँ मैसेज क्या है, पूरे सबक का खुलासा, नंबर एक, मुसलमान तब तक कामयाबी नहीं पा सकते जब तक अल्लाह के रास्तों में अपनी हर चीज़, अब वो चीज़ों की दोहराने की ज़रूरत नहीं, हर चीज़ उतनी ही खुशी से ख़र्च ना करें जितनी खुशी से अपनी शादियों, अपने घरों, अपने बच्चों के लिए ख़र्च करें। रोते धोते देने वाले के माल में बरकत कोई नहीं होती, याद रखिए। मजबूर कर कर के, लोगों को शर्मिंदा कर कर के कि कोई तो उठे पैसे दे, कोई तो उठे, आप तो दें, आप तो दें, और लोगों को झूठी बातों के तमाशों में डाल डाल के लोगों को पैसे जमा करने और करवाने पे ले जाएं, इस पैसे में बरकत नहीं होगी। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फिकु मिम्मा तुहिब्बुन, अंदर से अर्ज उठती है कि नहीं, अब जितने शौक़ से अपने लिए ख़र्च करती थी उससे ज़्यादा अल्लाह के रास्ते में करना है। ये है पहली चीज़ जो आज के दौर में मुसलमानों के प्रॉब्लम्स को सल्यूशन है। दूसरी चीज़ जो आयत नंबर 93 से 95 वाली आयत में थी, वो क्या थी कि हलाल और हराम, इसके ऊपर अल्लाह और उसके रसूल के कायम करदा असूलों पर रुक जाएँ। किसी के फतवों, किसी के इज्तिहादात, किसी की बातें, किसी बुज़ुर्ग की बात, किसी बड़े की बात करके जब हम दीन को डाइल्यूट कर देते हैं ना, तो दीन दीन नहीं रहता। डाइल्यूशन वाला दीन कभी अल्लाह की मदद नहीं लाता। प्योर मैसेज को कन्वे करें, आसान लफ्ज़ों में कह लें कि दूसरा हल क्या है कि लोगों को बेसिक रिसोर्सेज से जोड़ दें, कुरान और सुन्नत, इससे शायद इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा। तीसरी चीज़ जो उम्मत मुस्लिमा के मसाइल का हल है कि लोग खाना काबा या बैतुल्ला, उसके इर्द गिर्द जितनी भी निशानियां हैं, उनसे हिदायत लेने की नीयत से जाएं और देखें कि अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खड़े होने की जगह को इतना मोतबर क्यों किया। यानी आप दूसरे रस्म में कह लें कि हज को रस्म के तौर पर नहीं, शऊर के साथ इबादत समझते हुए करने वाले बन जाएं। और चौथा मेन सबक जो हमें आप इस पूरे पारे के एंड तक जमा करेंगे, 1, 2, 3, फोर्थ पॉइंट जो हमें इस फर्स्ट लेसन से मिल गया, वो क्या है कि मुसलमान गैर मुस्लिमों के नक्शे कदम पे चलने से बच जाएं, उनके स्टाइल ऑफ लिविंग को कॉपी करने से बच जाएं, और अल्लाह के नबी के ज़रिए से जो दीन आया उसके पकड़ लें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह जो नुक्ता आज शुरू हुआ है वो अल्लाह के हुक्म से अगले सबक में हमारा हल होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हक बात कहने की, सुनने की, उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।